Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Guru Dev, 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 Nitai Gaur Premanande, Yam Vishwambhad Paramahansa Parivad Ka Charashtu Darsat, Sri Samadeshi Bhakti Vedan Swami Prabhupad Maharaj Ki, Yam Vishwambhad Paramahansa Parivad Ka Charashtu Darsat, Sri Samad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad Maharaj Ki, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की श्याम कुंड राधा कुंड की गिरिराज गोवर्धन जी की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। श्रीमद् भागवतम अध्याय 23 चैप्टर 23 श्लोक संख्या 29 टेक्स्ट नंबर 29। मैत्री उवाच स्तुवतीषु अमर स्त्रीषु पतिलोकं गताः वधूः यम वा आत्मविदां धूर्य वेन्य अच्युताश्रया। मैत्रे उवाच स्तुवतीषु अमर स्त्रीषु स्तुवतीषु अमर स्त्रीषु पतिलोकं गतावधू पतिलोकं गतावधू यवा आत्मविदां धूर्यो यम वा आत्मविदां धूर्यो वैन्यो प्रापच्युतुजाश्रय वैन्यो प्राप अच्युत आश्रय। स्तुवतीषु अमर स्त्रीषु स्तुवतीषु अमर स्त्रीषु पतिलोकं गतावधू पतिलोकं गतावधू यवा आत्मविदां धूर्यो यं वा आत्मविदां धूर्यो वैन्यो प्रापच्युताश्रय वैन्यो प्रापच्युताश्रय। पढ़िए
Thank you.
సమరాత్రిషు పద్మీలోకం గదావదు సంవాద విదం దూరు మాతృజీ వాచు मैत्रेय उवाच जोर से बोलिए बहुत लोग मैत्रेय उवाच मैत्रेय ऋषि ने कहा स्तुवतीषु स्तुति कर रहे अमर स्त्रीषु देवताओं की पत्नियों के द्वारा पति लोकं जिस लोक में पति गया था गतः पहुंचकर वधूः पत्नी यमः जहां वा अथवा आत्मविदाम स्वरूप सिद्ध पुरुषों का धूर्य सर्वोच्च वैन्य वेन का पुत्र पृथु महाराज प्राप प्राप्त किया अच्युत आश्रय भगवान का आश्रय अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा मैत्रेय ऋषि ने कहा हे विदुर जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके पति सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। मेरे साथ दोहराइएगा। मैत्रेय ऋषि ने कहा हे विदुर जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया जहां उनके पति सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति के साथ मरती है या अपने पति की जलती चिता में भस्म हो जाती है वह अपने पति के लोक को जाती है। इस संसार में पितृलोक के ही समान पतिलोक भी है किंतु इस श्लोक में पतिलोक इस संसार के किसी भी लोक का सूचक नहीं है क्योंकि सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के कारण पृथु महाराज अवश्य ही भगवान के धाम वापस गए होंगे और वैकुंठ लोक को प्राप्त किया होगा। महारानी अर्ची भी पतिलोक गई किंतु यह लोक इस ब्रह्मांड में नहीं है क्योंकि वे वास्तव में अपने पति के लोक में गई। इस भौतिक संसार में भी जब कोई स्त्री अपने पति के साथ मरती है तो वह अगले जन्म में अपने पति से पुनः मिलती है। इस प्रकार महाराज पृथु तथा महारानी अर्ची वैकुंठ लोक में जाकर मिले। वैकुंठ लोक में पति तथा पत्नियां रहते अवश्य हैं किंतु न तो वहां विषय भोग संभव है न ही संतानें उत्पन्न करना। वहां के पति पत्नी परम सुंदर हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं किंतु विषयी जीवन नहीं बिताते क्योंकि पति पत्नी श्री कृष्ण की भक्ति तथा भगवान की महिमा के गायन तथा कीर्तन में निरंतर लगे रहते हैं अतः वे संभोग की अच्छी बात नहीं मानते, संभोग को अच्छी बात नहीं मानते। भक्ति विनोद ठाकुर का भी कहना है कि संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं। इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति से में रत रहकर तथा अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके और शास्त्रों के अनुसार मूर्ति की सेवा करके पति तथा पत्नी वैकुंठ लोक का जीवन बिता सकते हैं। उससे उनके मन में संभोग का विचार उत्पन्न नहीं होता। भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है। जो भक्ति में उन्नत है वह कभी भी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित नहीं होता, और जो ही वह विषयी जीवन से विरक्त होकर अपेक्षतया भगवान की भक्ति में आसक्त रहता है वह अपने को वैकुंठ लोक में निवास करना अनुभव करता है। वास्तव में भौतिक जगत नाम का कोई जगत नहीं है, किंतु जब मनुष्य भगवान की सेवा भूलकर अपनी इंद्रियों की सेवा में तत्पर रहता है तो यह कहा जाता है कि वह भौतिक जगत में जीवित है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति सपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। यं प्रभजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रीति तन्मयितया तर्वो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
मैं सबसे पहले सभी भक्तों से माफी चाहता हूं कि मैं कभी भागवत क्लास में नहीं आता, लेकिन भागवत क्लास देने लग जाता हूं। तो कहीं न कहीं हमारा दुर्भाग्य है कि कहीं न कहीं फंस जाते हैं, लेकिन ये गुरु वैष्णव की ज्येष्ठ वैष्णव की अहित की कृपा है कि आप अनाधिकार चेष्टा, हमारा कोई अधिकार नहीं, योग्यता नहीं, लेकिन आप अवसर देते हैं, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। महाराज पृथु विदुर महाराज और मैत्री ऋषि के बीच वार्ता है हरिद्वार में। बोले श्री राधा राजबिहारी जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री गौनिताय भगवान के, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्लोक का तात्पर्य है अनुवाद कि महाराज प्रथु ये धाम छोड़ करके भगवत धाम चले गए, तो उनकी स्त्री भी चली गई हैं, तो देवताओं की पत्नियां आपस में बात कर रही हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है तो यहां के जो साधारण व्यक्ति हैं संसार के, वो बातें तो करते हैं लेकिन वो ये बात शायद नहीं कर सकते कि फलाने की पत्नी भी वैकुंठ चली गई, क्योंकि इतना ऊंचा विचार नहीं हो सकता हमारा। तो देवताओं की पत्नियां आपस में बात करती हैं, तो यहां पर देवताओं की पत्नियां कह रही हैं कि अर्ची भी जो महाराज पृथु की धर्म पत्नी है वो भी अपने पति के लोग यानी जहां उनके पति गए हैं वहां चली गई है। यहां पर महाराज पृथु एक गृहस्थ की भूमिका भी बताते हैं कि पति पत्नी जन्म जन्मांतर कैसे साथ पर रह सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा विवरण देंगे। ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु नच पंडित। श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक को अक्सर अपने लेक्चर में कहते हैं। ऋणी पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी मां शत्रु है और सुंदर स्त्री शत्रु है। कौन सी सुंदर स्त्री? जो शरीर से सुंदर है लेकिन गुणों से नहीं। वाय सुंदरता है, ढांचा सुंदर है, जैसे साड़ी के शोरूम में आपने देखा होगा सुंदर सुंदर लड़कियां मरकरी बल्ब में, तो बहुत सुंदर लगती हैं लेकिन वो किससे बात करती नहीं, हरे कृष्णा भी नहीं बोल सकती, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए कि फलाने वाली साड़ी तुम भी पहनेगी तो ऐसे ही दिखेगी मरकरी बल्ब। अब मरकरी बल्ब खोपड़ी में लगा के कौन घूमेगा भाई? वो साड़ी में क्यों चमकती है? डायरोमा में बहुत हेलोजन लाइट लगा रखी है तो चमकती है। अब वो शोरूम वाले बोलते हैं आप भी चमकोगे, इसका मतलब हेलोजन सर में लेके घूमते रहो। तो शरीर की सुंदरता है, लेकिन यहां पर जो अर्ची है वो शरीर से ही सुंदर नहीं, गुणों से भी सुंदर है, भक्ति से सुंदर है। इसलिए गुणों से, कर्मों से, संस्कार से, भगवत सेवा से जो व्यक्ति सुंदर होता है उसी को शास्त्र में सुंदर कहा गया। कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी है, मथुरा लीला में वर्णन आता है। अब कोई उससे बात नहीं करता, देखता भी नहीं, क्योंकि उसका बाहर का ढांचा अच्छा नहीं है। तो भगवान को उसने थोड़ा सा लेप लगाया कृष्ण बलराम जी को, और भगवान ने उसको सुंदर अप्सरा बना दिया। कब सुंदर हुई हो? कृष्ण को, कंस को तो कई सालों से चंदन लगा रही थी, कभी सुंदर हुई? टेढ़ी रही हमेशा। लेकिन उसने एक दिन कृष्ण बलराम जी को चंदन लगा दिया और उसी क्षण भगवान ने उसको सुंदर बना दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कोई व्यक्ति कितना ही बदसूरत है शरीर से, किसी से, बाह्य दृष्टि से, लेकिन भगवान की सेवा करने से वो तुरंत सुंदर हो जाता। भगवान के भक्त भी सुंदर, श्री प्रभुपाद जी कितने सुंदर हैं, हमारे वैष्णवाचार्य पूर्ववर्ती आचार्य कितने सुंदर हैं सब। और एक बाह्य दृश्य से सुंदर आपने देखा होगा मूवी स्टारों को, और इनको बुढ़ापे में देखिए, जो मूवी स्टार आपने 20-25 साल पहले देखे होंगे अभी देखिए उनको, बिल्कुल आपको देखने को उनका मुंह देखने को मन नहीं करता। किसको कोई टेढ़ा हो गया है, कोई तिरछा हो गया है, क्योंकि जिंदगी भर बाह्य स्वरूप को दिखाया, वाई वाई लूटी, और जिसने ये स्वरूप दिया उसका कभी भजन किया नहीं। ये वाय सुंदरता भगवान की देन है, क्योंकि भगवान के छह गुणों में एक गुण यह है कि भगवान बहुत सुंदर है। तो ये जो भी हमको वाय सुंदरता मिली है ये भगवान की कृपा से मिली है। कई लोगों को हमने अभी देखा है सुंदरी प्रतियोगिता होती है, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस मुंबई, मिस जुहू। इसमें क्या है कि वाय ढांचे को थोड़ा दिखाना है, अंदर का ढांचे का कहीं कुछ पता नहीं है। तो वाह, लोग फोन करते हैं फलाने इतने बजे मेरी लड़की आएगी। होता क्या है, उनमें कोई अंतर्दृष्टि है, सिर्फ बाहरी ढांचे को देख करके हैं बस। इसको कहते हैं जैसे कोई जानवर कहीं मर जाए जंगल में, तो आपने देखा चील ऊपर से रेंगती है कि कब ये मरे और हम इसका मांस नोचे। ये जो सुंदरता की प्रदर्शनी है ये अपने बच्चे के मांस को नुचवाने जैसा है। स्पष्ट बात कहें, हम समझते हैं हमारी लड़का लड़की बहुत सुंदर है, हमने नाम कमाया, पैसा कमाया, प्रतिष्ठा की, लेकिन नरक जाने के लिए तैयार हो गया टिकट। अभी ये कोई सुंदरता नहीं। कई लोगों को देखा वो लड़कियां सुंदर हो गई, अभी खरबपति अरबपति हो गए, पूरी दुनिया में नाम हो गए, लेकिन कर्म क्या है तुम्हारा भाई? नाच रहे हैं, जिस्म दिखा रहे हैं लोगों को, लोग खुश हो जाते हैं। ये चील प्रवृत्ति के लोगों को खुश करता है जो बाह्य दृष्टि को देखते हैं। अंतर्दृष्टि क्या है? अंतर्दृष्टि से जब व्यक्ति सुंदर होगा तभी उसका कल्याण होगा। आजकल शादी ब्याह भी हैं, अंतर्दृष्टि थोड़ी है, बाह्य दृष्टि है। लड़का दिखाओ, लड़की दिखाओ, आज फिर बोलेंगे थोड़ा चल के दिखाओ। लड़की को बोलते हैं थोड़ा चल के आओ तो उधर से इधर, जैसे वो ऑर्थोपैथिक डॉक्टर बोलता है चल के आ तो जरा, किसी को हड्डी का प्रॉब्लम हो जाए ना तो बोले थोड़ा चल के आओ तो उधर से एकदम ठीक चल रहा है। तो ये चलना क्या है, अंदर से क्या चल रहा है ये तो भगवान ही जाने। बाहर से चल चल के, हाँ लड़की ठीक है, चलने में ठीक है एकदम। और चलना क्या है, वैसे कैसे चलना चाहिए, हाथी की तरह चलना चाहिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रयिनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, भगवान कहते हैं। चाल कैसे होनी चाहिए, हाथी की तरह मतवाली चाल होना चाहिए। अगर चलना है तो थोड़ा चल ले, हाँ ठीक है। यू वाय सुंदरता, शादी हुआ चलो पिक्चर देखने चलते हैं, थिएटर में बैठे पति पत्नी, पत्नी कह रही है वाह क्या हीरो बहुत अच्छा, और पति बोलता है हीरोइन बहुत अच्छी। बताओ पति धर्म, पतिव्रता धर्म कहीं रह गया? पत्नी पति के सामने कहती है क्या हीरो है बहुत सुंदर है। ये व्यवहारिक बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकल। आप पति पत्नी पिक्चर हॉल में बैठे हैं, क्या पति पत्नी धर्म है हमारा? पत्नी का ध्यान उसके ऊपर, पत्नी का ध्यान स्टार के ऊपर। बैठे हैं, लाइसेंस ले रखा आरटीओ का, ठीक है गृहस्थ हैं, अंदर कोई भाव है गृहस्थ का? बस दुनिया को दिखाने के लाइसेंस, हमारी शादी हो गया, अंदर से कोई लाइसेंस है? क्या धर्म है? अगर हम अपने शास्त्रों से, पूर्ववर्ती आचार्यों की जीवनी से लें तो गृहस्थ धर्म से कठिन धर्म कोई नहीं। इसका निर्वाह कोई कर सके तब। गीत गोविंद महाकाव्य के रचयिता हैं जयदेव स्वामी, तो किसी राजा के यहां रहते थे। तो एक बार जयदेव की पत्नी जी ने कहा कि मैं अपने पति के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, और अगर उन्हें कभी कुछ दुख हो जाए तो मैं तो उसी वक्त प्राण छोड़ दूंगी। तो राजा की पत्नी रानी बड़ी ईर्ष्या करने लगी, ये हमसे ज्यादा पति बढ़ता होगी। तो एक दिन उस रानी ने अपने मंत्री से कहा कि जब आप आज राजा शिकार खेलने जाए तो जयदेव जी भी उनके साथ जाएंगे, तो आप कुछ ऐसा करो, ऐसी खबर यहां पहुंचाओ, महल में ये खबर पहुंचा दो कि जयदेव जी मर गए। तो मंत्री रानी का आदमी था, वो जंगल, राजा तो जयदेव के साथ जंगल गए थे, तो उसने तुरंत आके सूचना दी कि जयदेव जी नहीं रहे, आज शेर ने सुबह नाश्ता कर लिया उनका। तो पत्नी ने जैसे सुना तुरंत बेहोश हो गई, सुनते ही। तो रानी ने कहा ये तो बड़ा मैं तो इसकी परीक्षा ले रही थी, तो सचमुच में बेहोश हो गई। तो इतने में जयदेव जी राजा के साथ वापस महल में आए हैं, तो उनको खबर मिली कि उनकी पत्नी मर गई है, बेहोश हो गई, मतलब बहुत देर से बेहोश है, मतलब कहीं चली तो नहीं गई। तो रानी ने कहा जयदेव जी से, मैंने ऐसा ऐसा अपराध कर दिया और मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, मैंने उसके मन का भाव जानने के लिए। तो जयदेव जी ने कहा देखो, हमारी पत्नी पतिव्रता है, वो हमारे दुख को एक क्षण भी सहन नहीं कर सकती। तो उसने जैसे ही सुना हमारे दुख का कारण, तो तुरंत मर गई ना, बेहोश हो गई। तो अभी उसको ये खबर सुना दो कि मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, शायद उड़ जाए, अगर पतिव्रता होगी तो उड़ जाएगी ना। तो दरबारी ने जाके कहा माता जी, जयदेव स्वामी जी को कुछ नहीं हुआ है, वो सब कुशल घर आ गए हैं। तुरंत खड़ी हो गई खबर सुनते। अभी हमारी प्रैक्टिकल लीजिए, हमारे पति देव का हार्ट अटैक हो गया और हमको फोन आया हार्ट अटैक हो गया, फलाने हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम चप्पल भी पहन रहे हैं, साड़ी भी ठीक की है कि नहीं, तो चेहरा शीशे में, मतलब ये सब ध्यान है, चप्पल का ध्यान, साड़ी का ध्यान, बिंदली का ध्यान, बताओ ये पति प्रेम है? प्रेम का मतलब क्या? किसी के दुख का समाचार तुरंत ही। गोपियां भगवान का वेणु वादन सुनती हैं, ऐसा थोड़ी बच्चे को नाश्ता करा दें, नाश्ता बना रही छोड़ के चली गई, मटकी में पानी लेने गई है, मटकी आधे रास्ते में छोड़ के चली गई। कोई पति की सेवा कर रही है, आधी सेवा छोड़ के ही चली गई, हमारे प्रीतम बुला रहे हैं, ये नहीं मैं थोड़ा जाती हूं, तुम एक आध घंटा आराम करो, ऐसा। प्रेम का मतलब क्या? भले प्रैक्टिकल आज व्यवहारिक जीवन में ये बात बहुत कठिन है, बहुत कठिन, लेकिन जहां पर हम भागवत की, भागवत गीता, पुराण उपनिषद की बात करें और वहां चरित्रों को देखें तो बड़े गंभीर चरित्र हैं, और ये सब सच हैं, सब हमारे महापुरुषों की वाणी में कहे गए। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया, अत्रि मुनि भगवान का भजन करते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं, एक बार कई साल बाद जागे, पत्नी से कहा कि हमको थोड़ा पानी पिला दो एक लोटा। पत्नी पानी लेने के लिए गई कुटिया में, दोबारा पानी लेके आई, अत्रि मुनि की दोबारा समाधि लग गई। समाधि मतलब भगवान के चिंतन में हमेशा खोए रहते। पत्नी ने कहा कि पतिदेव पानी लीजिए, आपने पानी मंगाया था। वो तो दोबारा समाधि में चले गए। अनुसुईया ने सोचा ये तो पता नहीं अभी कब जगेंगे, अच्छा अगर मैं कुटिया के अंदर चली गई, दूसरा काम करने लगी, अगर बीच में मेरे पति फिर जग गए तो। तो 12 साल तक, ऐसा वर्णन है कि 12 साल तक पानी का लोटा लिए अपने पति के समक्ष खड़ी रही अनुसुई। किस भाव से कि कहीं मेरे पति जाग न जाएं, मेरे पति बीच में उठ न जाएं। अगर उसने उन्होंने उस वक्त पानी मांगा, अगर मैंने पानी नहीं दिया तो प्यासे रह जाएंगे। इस भाव से खड़ी रही। 12 साल बाद जागे और देखा तो उसके शरीर का पूरा कंकाल हो गया। उसने पानी पिया, न सोई, न बैठी, न कुछ नहीं, एक ही मूर्तिमान अवस्था में। तो पति ने कहा, अरे प्रिय क्या हुआ, ये सब क्या हालत हो गई तुम्हारी? सत्यानुसुईया ने कहा, आपने जल मंगाया था करीब 12 साल पहले, मुनि को ध्यान नहीं, क्योंकि वो तो चिंतन में खो गए। समाधि मतलब जो भगवान की लीला चिंतन में खो जाना। इसी को हमारे वैष्णव पंथ में, हमारे मध्यगौड़ी संप्रदाय में, भक्ति मार्ग में, सनातन धर्म में इसको समाधि कहते हैं। समाधि मतलब ये नहीं आंख बंद कर लिया और ध्यान लगा रखा कोलाबा का या उधर नरीमान पॉइंट का और इधर लोगों को दिखाने के लिए और एक मिनट में कोई आया, हेलो तुम्हारा फोन आया है 1 लाख का लॉटरी खुल गया, अच्छा ध्यान के बीच में बोलो कि आपको एक फोन आया है, कोई आदमी बोला आपको 2 लाख रुपए देना है, अच्छा इधर लाओ तो फोन दे रहा, अच्छा भेज दो, फिर ये कोई ध्यान लग गया, मतलब लग गया, चाहे करोड़ों रुपए आ जाए, अरबों आ जाए, ध्यान लग गया तो लग गया। यानी कि बीच बीच में समाधि लेते रहो, फिर ये कोई समाधि? तो अत्रि मुनि की समाधि लग गई 12 साल। और पत्नी को देखा, अरे हमारी पत्नी कितना हमसे स्नेह करती है। पति का दिल भर आया। तब अपनी पत्नी अनुसुईया से कहा, हम इन 12 सालों में जिस इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे, वही इष्ट देव तुम्हारे गर्भ में पुत्र बन के प्रकट हो। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कर रहे थे और इतने में भगवान ने लीला शुरू की। नारद जी ने कहा, सत्यलोक में, वैकुंठ में और कैलाश पर्वत पर जाके बोल दिया, किस धराधाम में सती अनुसुईया जैसी कोई पतिव्रता नारी नहीं। तो सरस्वती जी को अच्छा नहीं लगा, पार्वती जी को अच्छा नहीं, हमसे ज्यादा पतिव्रता, लक्ष्मी जी ने कहा मुझसे भी ज्यादा पतिव्रता। नारद जी ने कहा, देखो हमने जो समाचार देना था दे दिया, अभी ये आप विचार करो, क्योंकि वो भी गड़बड़ी है ना कि वो ज्यादा पतिव्रता फिर मार खाने की काम, वही हमने सूचना दे दी, अब तुम खबर करो। तो तीनों अपने पतियों के पास गई, ऐसा नीचे भी ऐसे लोग होने लगे हमारे जैसे, नीचे मतलब इस मृत लोग। तो तीनों ने कहा, ठीक है हम परीक्षा लेते हैं, सती अनुसुईया की परीक्षा लेंगे। तो तीनों देव आए ऐसा वर्णन है। और सती अनुसुईया से कहा कि हम आपकी कुछ सेवा लेना चाहती हैं, आपके हाथ से भोजन करना चाहते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, शर्त कि आप नग्न अवस्था में बिना वस्त्र धारण किए हमको भोजन करें। देखो अनुसुईया पतिव्रता नारी, और पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है, उसका भगवान के प्रति स्नेह होगा। क्यों? और पतिव्रता नारी का दूसरा प्रमाण क्या है, जिसका पति भगवान का भजन करता हो उस नारी को पतिव्रता नारी कहते हैं। यानी कि दारू की दुकान खोल रखी है और पतिव्रता, पति चलाता है बियर बार, रात भर दारू बेचता है, उसकी पत्नी पतिव्रता। ये चाहे दंत कथा हो सकती है, शास्त्रों में ये कथा नहीं। पति परमेश्वर, दिन भर जुआ खेलो, फल में लॉटरी लगाओ, सट्टा, पति परमेश्वर। परमेश्वर जैसा काम होना चाहिए तब परमेश्वर, कोई परमेश्वर नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजहुं ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पितु तजो प्रहलाद,
भरत तजो महतारी, बलि तजो गुरु और भाई मंगलकारी। शॉर्टकट में बोलने पूरी चौपाई याद नहीं हो, कई देवे क्या याद नहीं रहता तो तुक मिला दिया। जिसका आश्रय भगवान नहीं है, राधा कृष्ण नहीं है, सीताराम नहीं है, विष्णु तत्व नहीं है, वो पति पतिव्रता नहीं हो सकता और वो पत्नी भी पतिव्रता नहीं हो सकती। उसका एक ही केंद्र बिंदु है कि पत्नी और पति दोनों का आश्रय भगवान होना चाहिए। अत्रि मुनि का आश्रय भगवान है, इसलिए सती अनुसुईया ने जो श्रम किया 12 साल वो तपस्या में परिवर्तित हो गए। अगर कोई दूसरा ध्यान कर रहे होते या कोमा में चले गए होते 12 साल, तो कोई हॉस्पिटल में कोमा में नस फट गई 12 साल कोमा में, तो उसको समाधि कहा जाएगा? अब पत्नी रोज आईसीयू के बाहर बैठी है 6 साल से, तो उसको अत्रि मुनि बोल देंगे पुत्रवती भाव? भूतवती भाव भी नहीं बोल सकते हैं। समाधि अलग और बुरे कर्मों का फल का समाधि अलग है। आईसीयू में पड़े रहो 6-7 साल, नाक ऊपर को है, वेंटिलेटर लगा रखा है बस, और पत्नी सेवा कर रही है, क्योंकि आईसीयू के बाहर एक अटेंडेंट जरूरी है आजकल हॉस्पिटल के नियम के अनुसार। तो कोई कहे अत्रि मुनि की पत्नी भी खड़ी रही, मैं भी आईसीयू के बाहर खड़ी रही, बराबर? कोई बराबर नहीं। तो तीनों देव आए और अत्रि अनुसुईया ने अपने पति का ध्यान किया। जिस इष्ट देव का आप ध्यान करते हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूं, मेरी रक्षा करिए। तो पति देव ने रक्षा की और पत्नी ने अनुसुईया ने तीनों भगवानों को बच्चा बना दिया और अपनी गोदी में बिठाया और तीनों को भोजन करा दिया। छोटे बच्चे जैसे अपनी माँ की गोदी, बच्चे को क्या ध्यान है कि माँ निर्वस्त्र है या साड़ी पहन रखी, और सेवा की, प्रणाम किया और तीनों देवता खुश हो गए। कहा हम आपके गर्भ में अंश रूप में प्रकट होंगे, इसलिए भगवान दत्तात्रेय का अवतार अनुसुईया के गर्भ से हुआ। ये जो पीछे दत्तात्रेय भगवान है, महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय की बहुत पूजा होती है। दत्तात्रेय दत्तात्रेय विजयते दत्तात्रेय विजय। तो पति और दूसरा पति कौन है? वास्तव में पति कौन है? भगवान पति है। पाति लोकं इति पति, जो पति पवित्र करे, पालन करे, उसको पति कहते हैं। भगवान 16,160 पत्नियों के पति हैं। और वैसे कहा जाए तो भगवान सबके पति हैं। हमारे सबके पति कौन है? भगवान। अगर भागवत के दृष्टिकोण से देखें तो हम कोई भी पुरुष नहीं है, हम सब स्त्री हैं। जीव स्त्री मात्र होता है, पुरुष मात्र कौन है? सिर्फ भगवान। तो हम जितने भी, पूरी दुनिया की जनसंख्या भी कितनी है? 7-7.5 अरब होगी। तो भगवान की कितनी पत्नियां हुई इस दुनिया में, इस लोक में खाली 7-7.5 अरब पत्नियां हो गई। अभी 14 भुवन का हिसाब लगाएंगे वो अलग है, ये खाली इधर का है। ये दुनिया की बात, भारत, अमेरिका, लंदन, ऐसे ही 200 देश हैं, तो 7-7.5 अरब जनसंख्या है। तो हम ये 7.5 अरब जो हैं, ये सब भगवान की पत्नियां हुई, क्योंकि पालन करने वाले को पति कहते हैं। पालन करे, पवित्र करे और रक्षा करे। एक पति अपनी पत्नी की भी रक्षा शायद नहीं कर सकता कभी कभी, लेकिन भगवान ऐसे पति हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी मेरी रक्षा की, कोई ऐसा कभी कभार हो गया। अभी हमारी पत्नी सुंदर है, कोई धमक गए 2-4-10 बदमाश, क्या करेंगे, पिटने की नौबत आई। लेकिन भगवान ऐसे पति हैं, अगर हम उनको अपना पति माने तो हमेशा हर जगह हमारी रक्षा करो। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसने सबसे पहले अपनी पत्नियों की तरफ देखा,
अगर वो पति थे तो उन्हें इज्जत क्यों नहीं बचाई? भीष्म पितामह की तरफ देखा, धृतराष्ट्र की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा, युधिष्ठिर महाराज से लेकर नकुल सहदेव तक किसी ने भी रक्षा नहीं की। तब उसने कहा, हे कृष्ण, अब आप मेरी रक्षा करें। तब भगवान ही द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो पति हैं, पालन करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। जब कोई पालन नहीं करता, कोई रक्षा नहीं करता, कोई भी पवित्र नहीं करता, ऐसी स्थिति में सिर्फ भगवान ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए मूल पति कौन है जीव का? भगवान। लेकिन उस पति के पास जाने के लिए, उस पति की पत्नी बनने के लिए हमको थोड़ा रिहर्सल करना पड़ेगा। तो रिहर्सल क्या है? 20 साल का पति, 25 साल के पति, 50 साल के पति, ये रिहर्सल है। कोई पिक्चर में काम करता है, पहले ड्रामा में, भरतनाट्यम इधर होता है, 1 महीना पहले रिहर्सल शुरू, टंग टंग वही करना है 1 महीने बाद, लेकिन ठीक पांव सही पड़ना चाहिए इधर का उधर, ये सब रिहर्सल है। मूल पति सबके भगवान है। पिता कौन है? भगवान है। गांधारी कहती है महाभारत में भगवान को कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने कहा, हे प्रभु, आप ही माता पिता हैं, सबके माता पिता, पति, सगे संबंधी सब भगवान है। इसलिए जो संसार का संबंध है ये आर्टिफिशियल है, ये रिहर्सल है। और ये रिहर्सल कहां के लिए हमको करनी है? कि संबंध हमारा भगवान से हो जाए। भगवान से संबंध होना है, और उसका एकमात्र उपाय बताया कलि काल में, हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आचार्य लोग भी हमको गृहस्थ धर्म बताते हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और नीचे आते हैं प्रैक्टिकल जीवन, उनके इतने बच्चे हैं, पत्नी। गृहस्थ धर्म में क्या है? पत्नी को भी सब बात माननी है, क्योंकि होम मिनिस्टर है। पत्नी मतलब होम मिनिस्टर, तो उसका भी बात मानना है, नहीं मानेंगे तो फिर घर में किलकिलबाजी। भक्ति विनोद ठाकुर भजन करते हैं, रात को ग्रंथ लिखते हैं, पत्नी पूछती है सो जाओ, नहीं नहीं वो फलाने कोर्ट का काम, क्योंकि अगर बोलेंगे मैं ग्रंथ लिख रहा हूं तो बोलेगी क्या कर रहे हो, सो जाओ। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हम कोर्ट का काम कर रहे हैं, फला कल हमको 2 केस का सजा सुनाना है, तो अभी से तैयारी करना पड़ गया। अच्छा कोर्ट का काम करो करो, कोर्ट का काम करो करो, भगवान का काम बंद करो। तो माने जा कभी पत्नी ठीक ना हो तो पति कुछ इस तरह करे, दूसरी चीजों में कितना झूठ बोलते हैं हम। तो भगवान के लिए भी अगर मान लिया हम भगवान की भक्ति करते हैं, पत्नी बीच में डिस्टर्ब करती है, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करें कि भजन भी हो जाए, पत्नी भी प्रसन्न हो जाए। दूसरे काम के लिए, दूसरे प्रपंच के लिए कितना, कई व्यापारी लोगों को हमने देखा, मैं खबर भी आई है हमारे पास, वो मर गए, 50वें अकाउंट खोल रखे हैं, पत्नी को मालूम ही नहीं है। मरने के बाद अभी उनका लेटर आ रहा है बैंक वालों का, इतना पैसा है इधर। पत्नी बोली हमको कभी बताया नहीं। तो पत्नी के नाम एक आध अकाउंट, लेकिन 20-25 अकाउंट अपने नाम से अलग सेपरेट, पत्नी को कोई खबर नहीं। तो बिजनेस में हम इधर उधर करते हैं। तो जब भगवान का भजन करना हो तो पत्नी कभी कहे ऐसा तो बोल दो कुछ बिजनेस का काम हो रहा है, तो अच्छा बिजनेस, बिजनेस में खुश हो जाएगी, अपने को लाभ होने वाला है, ठीक करो करो रात भर करो। और इसके प्रमाण भी है, देखो भक्ति विनोद ठाकुर वो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उड़ीसा में, तो एक नकली बाबा बालों वाला, जैसे आजकल एक बालों वाला, नाम लेना ठीक नहीं जूते पड़ेंगे। आजकल बड़ा ये पाखंडी लोग इतने भगवान हो के नाम भी नहीं ले सकते इनका, क्योंकि कानून इस तरह का बना है, संविधान बोल ही नहीं सकते, मानहानि का मुकदमा दायर कर देंगे। काम सब मानहानि के, बोलना नहीं है भैया, बस ये सब पाखंडी लोग, ये 10,000 साल बाद इन्हीं के मंदिर सब होगा। असल प्रभुपाद जी भी कहते हैं, कहीं मैं अपराध न कर रहा हूं, कि ये जो कृष्ण भक्ति है इस भूमंडल में संसार में 10,000 साल चलेगी, उसके बाद ये पाखंडी लोग नकली लोग ये जो रातों रात भगवान हो जा रहे हैं सब इनकी ही पूजा इनका हो। इससे 10,000 साल के भीतर जो व्यक्ति बुद्धिमान है अपना और अपने परिवार का कल्याण कर ले। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा मिशन 10,000 साल तक इस भूमंडल पर रहेगा। तो पाखंडी था एक, बड़े बड़े बाल, अपने आप को कृष्ण का अवतार, भक्तों ठाकुर ने कहा नहीं ये व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, आप कथा जानते हैं। पकड़ा, जेल में बंद कर दिया, योगी था, और उसके प्रभाव से भक्ति विनोद ठाकुर जी का पूरा परिवार ज्वर से पीड़ित हो गया। पत्नी ने कहा छोड़ दो उसको, सब बच्चों को बुखार आ गया, छोड़ दो। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये बुखार क्या, तुम सब मर भी जाओ तब भी नहीं छोड़ूंगा उसको, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खाली लोगों को दिखाने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर बैकुंठ के मजिस्ट्रेट हैं। इसका एक उदाहरण अक्सर कथाओं में कई लोग नहीं बोलते, या हो सकता है मालूम ना हो, भक्ति विनोद ठाकुर इस भूमंडल में इस भारतवर्ष के ही डिस्ट्रिक्ट जज नहीं थे, स्वर्ग में भी डिस्ट्रिक्ट जज थे भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा वर्णन है एक जगह। भगवत गीता के 9वें अध्याय में एक श्लोक है कि अपि चेत शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रैव च मंतव्यम सम्यक व्यवस्थित हो ही। इस श्लोक के ऊपर देवताओं में एक बार विवाद छिड़ गया। अब बाद में आप कमेंट्स कर लेना कि कहां से बोल रहा है, देखी जाएगी बाद में बता देंगे। तो देवताओं में, इंद्र में, इन सब देवताओं में विवाद छिड़ गया कि ये कैसे हो सकता है, अपि चेत शुद्राचारो, ये बात ठीक जचती नहीं। तो देवताओं में डिस्कस हुई इसके बीच में, श्लोक के ऊपर गीता के, तो कोई भी निर्णय नहीं ले सका। तो उस समय नवदीप से भक्ति विनोद ठाकुर को स्वर्ग ले जाया गया। ये बहुत ही सीक्रेट घटना है, बड़े बड़े आचार्य लोग कभी कभी भाव में बात बताते हैं, और मैंने भी कभी गलती से सुन लिया था इधर। अब मेरे को तो मालूम नहीं है किधर बोलना है किधर नहीं बोलना है, इधर ही बोल देते। कई दफे भाई महंगी चीज दिखाना नहीं चाहिए ना, ऐसे हीरे के जवाहरात, ऐसे थोड़ी की भाजी लेने जा रहे हैं पहन के चले जाओ, तो अपना क्या करना है बता दो जाने दे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को उस वक्त स्वर्ग में बुलाया गया। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक का समाधान किया और देवता लोग प्रसन्न हो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का नाम है सच्चिदानंद। भक्ति विनोद ठाकुर की जय बोलते हैं ना, जो सत चित और आनंद में से अवस्थित हैं, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर। तो पत्नी से कहा मरने दो, और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा इस योगी के बाल काट दो, नाई को बुलाया कि इसकी शेविंग कर दो जैसा हमारा कर देते, फिर बोलो इसको चमत्कार दिखाने के लिए। तो उनका सारा चमत्कार बालों में था, तो जब शेविंग हो गया चमत्कार खत्म हो गया। इधर बच्चे ठीक हो गए, और उधर वो जो व्यक्ति था वो जेल में मर गया। तो एकदम दृढ़ निश्चय श्री प्रभुपाद जी और नीचे नजदीक। अब कई लोग बोलते हैं तो भागवत की कथा है, अब भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत साल पुरानी बात हो गई। अच्छा श्री प्रभुपाद जी को देखो, उनकी पत्नी ने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने पत्नी से कहा
यू वॉन्ट टी और मी, तुमको चाय चाहिए मैं चाहिए, एक बार गीता कबाड़ी वाले को दे दिया था। तो पत्नी ने मजाक में कहा चाय चाहिए मेरे को, प्रभुपाद ने कहा चाय पीती रहो फिर चले। हमारा दिन में 10 बार पत्नी से झगड़ा, तेरे को चाय चाहिए या मैं चाय, शाम को फिर आ गया, क्यों आए तुम तो चले गए थे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाऊं, तू सब चाय पीने में लगा देगी, इसलिए दोबारा आना पड़ा, ये कोई बात है? प्रभुपाद जी असली गृहस्थ हैं, और कैसा उन्होंने संन्यास लिया, छोड़ा पीछे नहीं गए। कई ऐसे महात्माओं के उदाहरण हैं। गुजरात में एक उदाहरण आता है जलाराम जी का, भगवान एक दिन भिक्षु का वेश बना के आए, कहा हमको भिक्षा चाहिए, क्या अपनी पत्नी हमको दे दो, हम होते सीधे पुलिस में फोन लगाते हैं, एक महात्मा पाखंडी आया मेरी बीबी मांग रहा है। जलाराम जी ने कहा ले जाओ, भगवान को क्या करना है जलाराम जी की पत्नी का, कुछ दूर तक ले गए फिर छोड़ गए, फिर इतने में पत्नी वापस आ गई, तो ऐसा थोड़ी आ गई, आजा आजा ठीक है छोड़ दिया तुमको, जलाराम जी ने कहा हमने भिक्षा में दे दिया तुमको, दे दिया अभी जाओ। ये भाव सती प्रसंग में, भागवत में सती प्रसंग है, चलेगा 5-10 मिनट और। तो सती ने कहा भगवान शंकर से, भगवान लीला कर रहे थे पंचवटी में, हे खग मृग हे मधुकर श्रयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, रो रहे थे। और भगवान शंकर सती के साथ कथा सुन के आ रहे थे कहीं, तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया, सती ने कहा किसको प्रणाम किया आपने, इधर तो कुछ मंदिर अंदिर नजर नहीं आता है। अरे सामने प्रणाम किया, देखो मेरे इष्ट देव राम लीला कर रहे हैं। क्या लीला, रो रहे। सती ने कहा यही भगवान जिनको आप प्राणनाथ मेरी रक्षा करिए, खुद रो रहे। सती ने भी देखा रो, भगवान विलाप कर रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे पक्षियों हे चिड़िया खग, हे मृग हे हिरण, मधुकर श्रेणी हे भौरे, तुमने हमारी हिरण जैसी आंखों वाली सीता को देखा, रो रहे हैं। सती ने कहा एक आम आदमी की भी पत्नी खो जाती है तो अपने रिश्तेदार को फोन लगाता है, तुम्हारे यहां आई क्या, लेकिन ये त्रिलोकीनाथ होकर के कीड़ों को क्यों पूछ रहे हैं, वृक्ष को क्यों पूछ रहे हैं, लताओं को, ये जानवरों को क्यों पूछ रहे हैं। अगर ये भगवान हैं, पहले तो इनको मालूम होना चाहिए इनकी सीता को कौन ले गया, अगर मालूम नहीं भी है नर रूप में लीला कर रहे हैं तो आदमी को आदमी से पूछना चाहिए, तुम्हारे वहां पर पत्नी को देखा क्या। साधारण जीवन में भी किसी का पत्नी इधर उधर चली जाती है, एक आध घंटा लेट आई तो हम फोन घुमाते ना, तुम्हारे यहां से आई क्या, अरे तुम्हारे साथ भाजी लेने गई थी आई नहीं अभी तक, तुम्हारी बीवी आ गई मेरी नहीं आई, वो कद्दू लेने चली गई होगी दूसरे मार्केट, वो बोल रही थी किसी और भाजी लेना है जरा। सती से कहा भगवान ने देखो संशय मत करो, यही भगवान है लीला कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसी लीला करेंगे और भावी भक्त इनकी इस लीला का स्मरण करेंगे तभी कल्याण होगा। सती ने कहा लीला होती है लेकिन ये भी कोई लीला बताओ, मतलब अनहोनी, कोई उसका हिसाब होना चाहिए, ये थोड़ी की पेड़ से बात करने लगे, पेड़ क्या जवाब देगा। देखो भगवान शंकर पति अपनी पत्नी का गुरु होता है, तो गुरु कहता है पत्नी को अपने शिष्य को कि ये भगवान है, यहां पर कई सिद्धांत हैं। तो सती जी ने कहा, सती जी ने संशय किया अपने पति की बात पर, मतलब गुरु की बात पर, तो गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति, जो व्यक्ति शिष्य जो आश्रित व्यक्ति अपने आश्रय पर संशय करता है उसकी आत्मा का विनाश हो जाता है। सती जी ने संशय किया, नहीं नहीं
ये जमा नहीं मेरे को। भगवान शंकर ने कहा ठीक है भाई, तुम सत्य ने कहा मैं खुद ही परीक्षा लेके आती हूँ, ऐसा थोड़ी तुम जो कह दोगे वही मान लेंगे हम। परीक्षा लेने के लिए गई और भगवान के आगे सीता का रूप धारण किया और भगवान से कहा हे पतिदेव मुझे कोई रावण वगैरह नहीं ले गया, मैं इधर ही हूं देखो। तो भगवान के सामने जाती है, भगवान तो लीला कर रहे हैं, जैसे सामने जाती है भगवान फिर मुड़ जाते हैं, फिर सामने जाती है, फिर कहती है मैं सीता हूं, फिर क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं, बहुत थक गई, परेशान हो गई, पसीना पसीना, और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। तब भगवान ने कहा हे माता, सती माता, महादेव जी ठीक तो हैं? तो समझ गई ये अंतर्यामी, मेरे पति जो कहते थे एकदम सही बात कहते थे। इतने में प्रणाम किया, वापस आई। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, जो आपने कहा था वही हुआ। मैं तो गई, फिर मुझे समझा कि महादेव जी ऐसे थोड़ी हो गए, महादेव देवों के देव महादेव, तो मुझे अपने पति की बात पर विश्वास करना चाहिए। अब आजकल की बात हो तो इंक्वायरी कैसे करें। महादेव जी ने ध्यान लगाया, आंख बंद किया, सब लीला देख ली। तो लीला में एक क्षण के लिए सती जी ने भगवान राम की पत्नी सीता का अभिनय किया, और जब शंकर जी ने ध्यान में देखा कि मेरे इष्ट देव की पत्नी बनी है, भले लीला में बनी है लेकिन आज से इसके पति हमारा मां का भाव रहा, अब सती से बात नहीं करते, पत्नी का कोई व्यवहार सती के साथ नहीं करते, और हमारी पत्नी फिल्मों में काम कर रही है, उधर विज्ञापन में कर रही है, साबुन वाले में अलग कर रही है, मिर्च मसाले में अलग कर रही है, और हम बोलते हैं हमारी पत्नी बहुत बड़ी मॉडल है। अरे 50 आदमी के साथ तुम अभिनय कर रहे हो, शाम को बोलता हमारी पत्नी है, ये कोई बात है? भगवान शंकर थोड़ा सा अभिनय किया राम जी के साथ, जहां की कोई भी संशय नहीं कर सकता किसी बात। देखिए भले ये बात आज की तारीख में कानून के हिसाब से गलत हो, लेकिन भागवत के हिसाब से बिल्कुल गलत है, और ये बात हमको ही कहनी पड़ेगी जो हम ये कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, लटखाने ही पड़े, लेकिन सच बात बोलना है समाज में अगर समाज का सुधार करना है। ऐसा नहीं कि इसको बुरा लगेगा, नहीं नहीं, अच्छा आप बहुत बड़े बलि महाराज दानी हो, ऐसे काम नहीं, कुछ न कुछ बातों को बोलना पड़ेगा समाज में, भले कुछ दिन हम निंदा के पात्र होंगे। श्री प्रभुपाद जी ने भी प्रचार किया तो अमेरिका में ऐसे थोड़ी कि पहले उनकी स्तुति हो गई, उनको CIA का एजेंट बताया, एक ये इंडिया का फिल्म स्टार, इसने पिक्चर भी बना दी दम मारो दम, कहे को करते गम। तो पहले पहले करना पड़ेगा, लेकिन आज जिन्होंने काम किया उनकी कोई पूछ है? प्रभुपाद जी ने जो काम किया जगत में श्री प्रभुपाद जी बंद नहीं है, इससे कहीं पे कोई काम गलत हो रहा है हमको रिस्क लेके बोलना पड़ेगा, भले ही वो कानून के हिसाब से या माहौल के हिसाब से कितना ही गलत हो, सही हो। जहां पर पति धर्म गृहस्थ धर्म की बात हो रही है तो ये चर्चा करनी पड़ेगी, उससे भी नीचे एक व्यवहारिक चर्चा लीजिए। पंडरपुर में गोरा नाम का एक कुम्हार था, सच्ची घटना है, आषाढ़ी के मेले में एकादशी के दिन मेले में भगदड़ मच गई, उस भगदड़ में उसका लड़का मर गया दबके, और इतने में पत्नी, वो जो गोरा कुमार है वो पंडरीनाथ का भक्त है पंडरपुर में विट्ठल भगवान का, उसने कहा विट्ठल जी की यही इच्छा, इस मेले में हमारा बच्चा उसने ले लिया। पत्नी ने कहा तुम्हारा विट्ठल कोई भगवान नहीं, उसने मेरा बच्चा मार दिया। तो रोज अपने पति को कोसती कि तुम जिसकी भजन करते हो, जिसकी उपासना करते हो, उसने हमारे बच्चे को आषाढ़ी एकादशी के दिन छीन लिया, ये भगवान पूजनीय नहीं है। तो गोरा कुमार बोला तुम देखो हमारे भगवान के पति ऐसी बात मत कहो, क्योंकि भक्त भगवान की निंदा सुन नहीं सकता। तो रोज गाली देती विट्ठल भगवान को। गोरा कुमार एक दिन बोला क्या चाहिए तुमको,
कि तू विट्ठल भगवान को गाली देना बंद कर दे, क्या चाहिए बोल। पत्नी ने कहा मैं चाहती हूं कि कोई मुझे मां कहे, मुझे लड़का चाहिए। गोरा कुमार बोला आज से तू मेरी मां, मैं तेरा लड़का, मैं तेरे को मां बोलूंगा कल से। तो गोरा कुमार अपनी पत्नी को बोलता है मां। देखो विट्ठल का भक्त है, भक्त का लक्षण देखिए। तो पत्नी ने क्या समझा, थोड़ा गुस्से में बोल दिया होगा, बोलने में क्या जाता है। तो गुस्सा शांत हो जाएगा तो फिर ठीक है। तो कई साल बीत गए, गोरा अपनी पत्नी को मां बोलता है। पत्नी ने बहुत प्रयास किया, बिल्कुल। तो पत्नी ने समझा ये भक्त है और वचन का पक्का है, तो अपने पति से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हारी मां हुई ना। गोरा बोला नहीं नहीं, अभी झंझट में नहीं पड़ेंगे हम, पहले ही झंझट बड़ी मुश्किल हो गया। पत्नी बोली आप मेरे को मां कहते हो, आप हमारा लड़का हो, तो आपकी ड्यूटी है कि आप मां की आज्ञा का पालन करो। तो पत्नी ने अपनी छोटी बहन से गोरा कुमार की शादी कर दी। तो शादी की, तो जब बारात विदा होने लगी तो सास ससुर ने कहा गोरा कुमार से, तुमने जैसे हमारी बड़ी बेटी को रखा था, मतलब इसकी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। उन्होंने इस भाव से बोला ना कि अभी तक इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो जैसे तुमने हमारी बड़ी बेटी को सुख से रखा, ऐसे ही छोटी को भी रखना। तो गोरा क्या समझा, बड़ी को मैंने मां की तरह रखा था, इसको बहन की तरह रखूंगा। वो भक्त का विचार है। तो जब शादी करने के बाद घर में आए तो गोरा सहन कर रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी जिससे शादी उनके साथ सहन नहीं करता। एक दिन पत्नी ने क्या किया, गोरा कुमार सो रहा था तो अपनी पत्नी बहन से कहा कि तुम जाके गोरा के साथ सो जाओ। तो पत्नी जाके सो गई, वो सो रहा था तो पत्नी का हाथ गोरा कुमार की छाती पर चला गया सोते वक्त। तो जब गोरा की नींद खुली तो उसने देखा कि लड़की का हाथ मेरे शरीर पर। लड़की ने शायद जानबूझ के रखा होगा, या हो सकता है नींद में उसका हाथ साथ में सोए थे पड़ गया। तो गोरा की जब नींद खुली तो उसने कहा कि अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, अपनी बहन के शरीर पर हाथ लगा दिया। तो चाक के कुम्हार था, वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो उसने कुमार ने कहा आज मेरे हाथों ने इतना अपराध किया है, इनको क्षमा नहीं करना चाहिए। तो जिस चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता था उस चाक पर उसने अपने दोनों हाथ काट दिए। किस लिए, कि इन हाथों ने मेरी बहन के शरीर पर हाथ क्यों लगाए। और जो रोजी रोटी का धंधा था वो भी बंद हो गया। लेकिन भजन करता है, और भजन के प्रभाव से ही ऐसा वर्णन है कि एक बार बैकुंठ में आवाज गई तो विट्ठल नाथ आए। एक मजदूर गरीब का वेश धारण करके कुम्हार से कहा, गोरा से, कि हम यहाँ कुछ काम के लिए आए हैं, हम कुम्हार का काम जानते हैं, तो कहीं काम नहीं मिला हमको, आपके यहाँ काम मिलेगा। तो गोरा बोला मेरी मशीन है, सब है, आप काम करिए, बर्तन बेचिए। देखिए जो भक्ति अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा, भले मैं खुद भाषण दे रहा हूं, मेरा खुद का चरित्र नहीं है ऐसा, लेकिन कभी मैं गलत काम करूंगा तो मुझे शायद विचार आएगा ना, मैं फलाने जगह भाषण दे रहा था। अभी हम लोग कोई बियर बार में चले जाएं लाल कपड़ा पहन के और उसको बोले पैक लगाओ, तो एक दो चार दफे देखेगा ना हमारी तरफ, चाहे हम एक पैक का 10 रुपए का पैक हम 40 दे दें, लेकिन अगला वेटर दर सोचेगा कि कैसा आदमी पैक मांग रहा है यार। तो कभी कभी भाषण देने से भी अपनी रक्षा होती है। शर्म, मान लीजिए मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे शर्म आएगी, अगर वहां भाषण दे रहा था और इधर मैं खुद ऐसा काम कर रहा हूं तो शायद रक्षा हो जाए। तो ऐसा आप मत समझना कि मैं भाषण दे रहा हूं मेरे में योग्यता है, हमारे अंदर 1% योग्यता नहीं। ये अपना लेक्चर को ठीक करने के लिए हम भाषण दे रहे हैं, आप बोलेंगे कुछ आता नहीं तो चलो यही सही। हम खुद वक्ता के अंदर ऐसा कोई भी गुण, तो ऐसा वर्णन है। भगवान आए, मिट्टी के बर्तन भगवान बनाते हैं, बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जो भी कमाई होती है गोरा कुम्हार को दे देते। अब भगवान के बर्तन हैं बनाए हुए, अच्छे सब भगवान के बर्तन खरीदते हैं।
लेकिन गोरा कुमार ने विचार किया कि किस विश्व ब्रह्मांड में कौन ऐसा आदमी होगा जो मेरे यहां काम करे, माल बेचे और सब पैसा मुझे दे दे। इस विश्व ब्रह्मांड में, इस भूमंडल में तो इतना ईमानदार आदमी कोई होगा नहीं। एक कीर्तन कर रहा था, उसने ध्यान लगाया तो इतने में भगवान को आभास हुआ कि गोरा ने हमको पहचान लिया है। तो भगवान ने कुमार से कहा, कुमार बोला मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं शाम को बर्तन बेच के आ जाऊंगा, फिर बताऊंगा। तो भगवान जब समझ गए मुझे पहचान लिया है और अब इसकी आजीविका के लिए पूरा पैसा हो गया, अभी इसकी आजीविका चल जाएगी, तो भगवान उस दिन शाम को वापस, उस दिन से वापस नहीं आए। तो एक पद है कि श्याम गई पर श्याम नहीं आए, और श्याम बिना नहीं श्याम सुहाए, ऐसे मराठी में पद है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धांत है और उसको मानना पड़ेगा। अब कोई कहे भाई नहीं, आजकल के समय में संभव नहीं है, तो अब ऐसा तो नहीं है भाई कि अब संभव नहीं है तो शास्त्र के नियम ही बदल जाए। अब मान लीजिए आज का समय बदल गया, लेकिन सूर्य के उदय होने का समय तो नहीं बदला। जमाना बदल गया तो क्या सूर्य भी आजकल 7 बजे उदय होते हैं? सूर्य चंद्रमा भगवान की प्रकृति में जितने भी उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं सब सही समय पर सही काम करते हैं। सूर्य नियत समय पर, उसका नियत समय पर अस्त हो जाता है। गर्मी के दिनों में ही गर्मी, ठंडी के दिनों में सर्दी। ऐसा देखा आपने कि नहीं, आज से 100 साल पहले मई और जून में ठंड होती थी, जनवरी में गर्मी होती थी, सुना? या आज से 200 साल पहले सूर्य एक दिन छुट्टी पर चले गए थे, लड़की की शादी थी उनकी, सुना? पर तुम भगवान की क्रियाएं देखो, एकदम अनादिकाल से फट चल रही। इसलिए उनकी जो बातें हैं, उनकी जो वाणी है, भगवान की कथा जो शास्त्रों के माध्यम से कही गई, जैसे सूर्य और चंद्र सत्य है, वैसी भगवान की कथाएं सत्य हैं, प्रमाण सत्य हैं, जो नियम उसमें बताए गए वो सत्य हैं। लेकिन कोई कहे हम अपने हिसाब से बदल देंगे तो इसका भुगतान हमको करना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में की गई है। 26 प्रकार के नरक होते हैं, 28 तरह के। और भगवान को जरूरत पड़ी 2-4 नरक डिपार्टमेंट और खोल सकते हैं, इसमें कोई भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं तुम यही करो, ऐसा समझ। तो मैं यहां पर विराम देता हूं, किसी का कोई कमेंट्स हो हम गलत बोल गए हो तो आप लोग बोल सकते। हरे कल से पूना में भागवत कथा है 18 से 26, तो आप कोई पूना की तरफ आ रहे हो तो उधर आ जाना, स्वारगेट। कोई प्रश्न आप पूछिए, माइक दीजिए इनको।
कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्ण।
असम गीता में सुनते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अंतकाल मुझे याद करेगा वही मेरे पास आएगा। बट यहां पे हमने सुना कि जो पत्नी अपने पति के साथ जाएगी वो भी गोलोक जा सकती है, अगर पति जाएगा तो
दोनों पति के साथ गोलोक तब जाएगी ना जब पति गोलोक गया होगा। हाँ, पति गया गोवा तो पत्नी अमेरिका कैसे चली जाएगी? उसका मतलब क्या है? फिर तो महाराज वैकुंठ लोग गए हैं, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं, अवतार भी हैं, इसलिए अर्ची भी गई। अब पति गया गोवा को तुम बोलेगा पत्नी अमेरिका चली जाए, कैसे होगा भाई? पति भगवान का भजन करता है इसलिए गई ना उसके साथ। और कोई माइक दो। बुरा मत मानना।
अरे कृष्ण
जो जल्दी में है, टाइम
बहुत सुंदर प्रवचन आपका।
हाँ।
किंतु मेरा प्रश्न यह है कि आपने बताया कि अगर किसी का पति बियर बार चलाता है तो उसकी पत्नी जो है सो पतिव्रता कैसे हो सकती है? तो चैतन्य चरितामृत में एक कथा है ब्राह्मण की। ब्राह्मणी जो थी बहुत बड़े पतिव्रता थी, किंतु ब्राह्मण को बहुत ही स्वास्थ्य खराब था, कुष्ठ रोग, और उसकी मन में ऐसा विचार आ रहा था कि कोई गांव में एक अच्छी बेशिया है उसके साथ संबंध करें, और पत्नी ने पति की संतुष्टि के लिए उस बेशिया के घर में जाकर नौकरानी मर गए उनके काम की।
चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है?
हाँ,
कहाँ पे?
वहाँ पर मैंने ऐसा एक बार सुना लेक्चर में।
कहाँ सुना लेक्चर? कोई चैतन्य चरितामृत में नहीं है,
हमारे गुरु महाराज जी सुना रहे थे कि जो लेने
होगा कई प्रॉब्लम, लेकिन चैतन्य चरितामृत में है, कहाँ पर दिखाओ तो। कई दफे क्या है सुन लिया ऐसे ही है,
मैं दिखाऊंगा, है मेरे पास।
तो क्या इसका उत्तर है तुम्हें बताओ,
बुक ला कर दूंगा आपको।
अच्छा, सेवा से संतुष्ट होना है, लेकिन वो कुष्ठ रोगी वैसे, पहले तो ये बताओ कि कुष्ठ रोगी को कौन अपने पास बुलाएगा? जैसे कुष्ठ रोग है वो किसी का संग करना चाहता, कोई बोलेगा उसको हमारा संग करो, उसको रोगी ऐसा है, तो हो सकता भगवान का भक्त उसमें भक्ति माध्यम केंद्र बिंदु जरूर रही होगी, भक्ति केंद्र बिंदु होगी ना। ऐसी भी कथा है पुराणों में कि एक योगी पेड़ के नीचे बैठा था, कई देव ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं, तो ऊपर से एक चिड़िया ने उसके ऊपर बीट कर दिया लैट्रिन उसके सिर पर, तो गुस्से में ऊपर को देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। तो योगी समझा कि अपने पास पावर है कि हम किसी को आंख दिखाएं तो भस्म हो जाएगा, तो उसने समझा भी कमाई करने का अच्छा धंधा है, तो मार्केट में गया, बाजार में, तो कसाई की दुकान पर गया, कसाई को बोला कि हमको 100 रुपया दो, उसने कहा 100 रुपये नहीं 1 रुपये देंगे, उसने आंख दिखाई, कसाई बोला मैं पेड़ की चिड़िया नहीं जो भस्म हो जाऊं। तो योगी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इसको कैसे मालूम कि मैंने चिड़िया भस्म किया और ये दिन भर कसाई का धंधा करता है। तो उस योगी ने कसाई को पूछा कि तुम्हारे अंदर ये पावर कहां से आई? तो कसाई बोला मैं माँ बाप की सेवा करता हूं। तो उसने कहा आपके माँ बाप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि वो मेरे माँ बाप भजन करते हैं। तो माँ बाप की शक्ति का भले ही वो दुरुपयोग करता हो लेकिन शक्ति माँ बाप की आई। तो कुष्ठ, अभी जलंधर की कथा है, तुलसी और जलंधर की, जलंधर का भगवान ने उद्धार कर दिया, किसकी वजह से? तुलसी की वजह से। अब भगवान ने उसका ऐसे भी, वैसे हमारे वैष्णव धर्म के अनुसार तो गलत बताते हैं, लेकिन जो पिक्चरों में दिखाते हैं, भगवान ने तुलसी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया ना पहले, और फिर जलंधर को मारा। तो हो सकता है उसमें जरूर कोई मध्यस्थ भगवान की भक्ति रही हो, ऐसा नहीं कोई आम कोड़ी हो। मान लीजिए आपकी रोड पर कोई कोड़ी है, वो अपनी पत्नी से कहे मेरे को वैश्या के यहां ले चलो, और पहले तो मार खाने की बात है, एक प्रैक्टिकल बात, और उसमें अगर भक्ति मध्यस्थ नहीं है तो सेवा मध्यस्थ नहीं हो सकती। अगर सेवा मध्यस्थ है तो मां की सेवा सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, तो भरत महाराज ने अपनी मां की सेवा को क्यों त्याग दिया? भले इसमें गूढ़ रहस्य है कि केकई को भगवान ने कहा था कि आप मेरे को वनवास देना, ये बहुत ऊपरी सिद्धांत है, अभी गूढ़ सिद्धांत है, लेकिन आम मर्यादा में तो भगवान केकई भगवान के प्रति अपराध कर रही है ना, कि उनको वन भेजना चाहती है, लड़कियों को राजा बनाना चाहती है। बलि महाराज को, शुक्राचार्य कहते हैं बलि महाराज को, आप इनकी चक्कर में मत आओ, दान देने से मना कर दो। तो यहां पर गुरु की श्रेष्ठता नहीं मानी गई। उस कोड़ी प्रसंग में थोड़ा पढ़िएगा, मैंने नहीं पढ़ा है, खाली झूठ बोलने से क्या फायदा, उसमें भक्ति केंद्र बिंदु होगी।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हाँ बोलिए, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की।
हाँ बोलिए। तो एक बात था कि शास्त्रों में ऐसे पत्नियों का उदाहरण है जिनके पति भक्त नहीं है लेकिन उनको काफी सम्मान दिया गया है, जैसे मंदोदरी है रावण की पत्नी, और कयादु है हिरण्यकश्यपु की पत्नी।
हाँ, तो सबसे पहले इसका कयादु कौन है, हिरण्यकश्यपु कौन है? जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हैं वैकुंठ के। अब एक आदमी 1 करोड़ रुपया रोज खर्चा करता है और एक आदमी के पास 100 रुपये नहीं, तो बोलेगा कि 1 करोड़ खर्चा करता है मेरे पास 100 रुपये नहीं, तो उसके जलेगा अंदर ही अंदर। तो ये कोई, अरे उसने करोड़ पहले कमा के रखा है ना। तो रावण और जो हिरण्यकश्यपु हैं, ये जय विजय नाम के दो द्वारपाल हैं वैकुंठ के,
और उन्होंने वहां से वो सेवा मांग के लाए हैं, तीन जन्म का वैर मांग के लाए हैं, तो उनका कल्याण प्रतिकूल भाव में होना है। दो भाव में भक्ति होती है, प्रतिकूल और अनुकूल भाव। तो राक्षसों का उद्धार भगवान ने प्रतिकूल भाव में किया और भक्तों का अनुकूल भाव में। तो मंदोदरी और इनका जो उदाहरण है वो भक्ति की पत्नियां हैं।
गांधारी,
गांधारी धृतराज जी पूर्वजन्म की कथा है। वो राजा था, एक बार अकाल पड़ गया था। कथा सुनो एक घंटा तो फिर सुना देता हूं, लेकिन एक बजे लंच होगा। फिर महाभारत में कथा है इसकी, एक डेढ़ सवा घंटा लगेगा। तो गांधारी भी भक्त है, ये तो अभिनय कर रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। अच्छा, अभी द्रौपदी के पांच बच्चों को मार दिया और कुंती बोलती है भगवान को हमको दुख दो। ये लोग इस जगत के जीव नहीं है, ये सब भगवान के पार्षद हैं। भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तो अपने साथ लेके वो हमारी द्रौपदी हमारी तरह नहीं रोती। उसके पांच बच्चों को मारा, उसने भगवान से कहा द्रोणाचार्य हमारे गुरु थे, ये हमारा गुरु पुत्र है, माफ कर दो। बहुत उच्च कोटि की महिला है। जो गीता में चार तरह के भक्तों का वर्णन है, चतुर्विधा भजन्ते यो मा जने सुकृत अर्जुनो, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर सब। उसमें जो आर्त है वो द्रौपदी है, और उस आर्त का वर्णन गीता में किया गया जो आर्त भगवान की तरफ जाता है। जैसे एक व्यक्ति गरीब है, हे प्रभु मैं अमीर होना चाहता हूं, भगवान की कृपा से अमीर होना चाहता है, और एक व्यक्ति डकैती डाल के अमीर होना चाहता है, दोनों में फर्क है। तो एक अपने दुख को भगवान के समक्ष बोलता है, एक अपने दुख को संसार के समक्ष बोलता है, दोनों में फर्क है। उसमें जरूर कोई ना कोई पूर्वजन की ऐसी विशेषता रही होगी। प्रहलाद महाराज की पूर्वजन की कथा, वो तो चील थे। ऐसी कथा, एक चील घायल होकर के नरसिंह भगवान के मंदिर में गिर गई परिक्रमा मार्ग में, और तड़प तड़प करके ऐसे परिक्रमा पूरी की। पूर्वजन प्रहलाद महाराज की कथा। ध्रुव महाराज पूर्वजन में बहुत बड़े योगी हैं, ऐसा नहीं कि भगवान छह महीने में प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज करोड़ों जन्मों से उपासना कर रहे हैं, इतनी बाकी रह गई थी उनकी। जैसे आपने LIC भरना है 1,00,000 रुपया, 90,000 भर चुके हैं। तो जिसने अभी फिलहाल LIC शुरू किया है वो बोलेगा 10,000 में इसको सब कुछ मिल गया। उसको ये मालूम थोड़ी कि 10 साल से LIC का भर रहा है प्रीमियम। तो पूर्वजन का कुछ न कुछ, ये सांग तंतु गतम पापम जनानांग पुण्य कर्मणांग ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दंड पड़ता है। इसलिए कुष्ठ रोग में भी ये सांग तंतु गतम पापम, ये सिद्धांत जरूर होगा। और गोकुलेश्वर जी और बताइए, कमेंट्स दीजिए, प्रश्न मत पूछिए, हम उत्तर देना नहीं आता। हाँ हाँ, माइक मुंह पर लगाओ।
जो हम पूजा पाठ करते हैं हमारा, उसका फल बच्चों को भी मिलेगा।
हाँ मिले। अरे तुम नौकरी करते हो तो सैलरी तुम्हारी बीवी को नहीं मिलेगी? जब एक आदमी नौकरी करता है तो पूरे परिवार का खर्चा, एक आदमी घर में अगरबत्ती जलाता है तो जलाने वाली कोई सुगंध थोड़ी आती है। तो ऐसे पूजा पाठ तुम करेगा जितने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भी देख लो, अगर तुम दारू पिएगा सब गए तुम्हारे साथ।
अच्छा काम, धन्यवाद।
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण, धन्यवाद।
बोलिए ग्रंथराज श्रीमद। अच्छा अब पुनः मैं पूछ लेना वो जी, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।